भगवद्वीरानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मंदे कृतेंदी वरम जटन जागुडरोच संविदतम पट्टंबरस्य बिंदारण्य निवासिनम हृदिल सद्दामाभिरामोदरम राधास्कंद निवेशितो जलभुजम ध्यायेम दामोदरम तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तन्ने माम चरण भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गम् कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना विन्देन्मस्ते चरणा
गुरु गौरांग की कृपा से हम लोगों का त्रयोदश दिन बीत गया निर्विघ्न रूप से। आज हमारी वृंदावन से परिक्रमा समाप्त हो रही है और आज ही हम 12 बजे के करीब गोवर्धन के लिए यात्रा करेंगे। हम लोग पंचम साधन की व्याख्या कर रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भजन रहस्य से। पहले दिन बतलाया अई नंद तनुज किं करम, उसी में बतलाया कि सिद्ध देह का आभास होता है, इसके पहले नहीं। और इसी समय में कृष्ण उसकी प्रार्थना को सुनते हैं इसके बाद निरपराध रूप से नाम करते 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 कृष्ण कृपा से भावोद्गम होता है, भाव उत्पन्न होता है जिसको रति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है। श्रीणवतांग स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो श्यभद्राणि विधुनोत्सुहित सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च जे चेत एतै अनाविद्धम सत्ये प्रसीदति। ये सत्ये प्रसीदति यही है शुद्ध सत्व में अर्थात तो रति अवस्था में वो आ जाता है। श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण का जस श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले। यदि कोई कीर्तन करता है और यदि कोई श्रवण करता है, यहां तक के अनुष्ठान करने वाला भी उसको भी पवित्र करने वाला है। कृष्ण यदि कृष्ण की कोई कथा सुनता है, विशेष करके दशम स्कंद वाली कथाएं और भी तो ठीक ही हैं, किंतु दशम स्कंध वाली और उसे उत्तर उत्तर सख्य वात्सल्य और फिर मधुर रस की रासलीला इत्यादि की कथाएं सुनते हैं तो वो हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और बंधु की भांति उसके हृदय में पहुंचकर यदि अनर्थ है तो समस्त अनर्थों को साफ कर देते हैं क्योंकि वो सुहृद हैं सबके। श्रीमद् भागवत और भक्त भागवतों के दोनों भागवत नष्ट प्रायेषु नित्यम भागवत सेवया, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों के निरंतर सेवन से अशुभ प्राय क्षीण प्राय हो जाते हैं, प्राय वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, कामनाएं वासनाएं। और उत्तम श्लोक कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण में नष्ट की भक्ति उत्पन्न होती है। नष्ट की भक्ति पहले उत्पन्न होने के बाद ही में रज तम इत्यादि गुण हैं और उनके भाव काम क्रोध इत्यादि शांत हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है और शुद्ध अवस्था भावावस्था को वो प्राप्त करता है, रति स्थिति को वो प्राप्त करता है। जार कथा श्रवण कीर्तने पुण्य है से कृष्ण हृदय बसिया नाशे भय साधक अभद्र क्रमशः करे नाश भक्तिर नैष्टिक भाव करण प्रकाश रजस्तम समुद्भूत काम लोभहीन हैया भक्त चित्त सत्य है तो प्रवी प्रवी। मैं तो थोड़ा उठा भजन रहस्य निष्कपट रूप से श्री गुरु चरणों में आश्रय करने के पश्चात वासुदेव की कथाओं में रुचि होती है, कृष्ण की कथाओं में रुचि होती है। श्रवण कीर्तन आदि साधनों के क्रियाओं से, साधन क्रियाओं से साधक के जितने भी अभद्र काम वासना अनर्थ अपराध सब दूर हो जाता है, हृदय अंतःकरण निर्मल हो जाता है। यदि निर्मल अभी नहीं हुआ तो समझो जब अभी ठीक से हरि कथा नहीं सुनी जा रही, उसको पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जरूर हो जाता। अभी नाम संकीर्तन भी ठीक से नहीं हो रहा है, नहीं तो उसमें सारी लीलाएं हृदय में स्फूर्ति होती है उसको देखते। कृष्ण नाम तुआ अनेक स्वरूप जसोदानंदन और सब जितनी भी कृष्ण नाम हरे कथा, तो ये होने से नाम की का रूप गुण क्रिया सब उपलब्धि होगी। अभी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी नामाभासी में या नामापराध में हम लोग हैं। कथा के माध्यम से भगवान स्वयं भक्त के हृदय में प्रकाश करते हैं, प्रवेश करते हैं और समस्त प्रकार के अभद्र मंगल अनर्थ अपराध इत्यादि बुरे प्रारब्ध कर्म फल को नष्ट करके हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। भक्त का हृदय रोग भी दूर हो जाता, कामना वासना भी दूर हो जाती है। भागवत सेवा से ग्रंथ भागवत और भक्त सेवा को समझना चाहिए। इन दोनों की सेवा से साधक के हृदय में अचला भक्ति उदित होती है। संग के क्रम से कर्म और फल वैराग्य भी दंश हो जाते हैं। अभक्तम अर्थात मायावादी, ज्योतिष संघ की कुछ प्रवृत्ति जागृत नहीं होती। यदि जागृत होती है तो ठीक से श्रवण कीर्तन और उसका साधन नहीं हो रहा है। हो रहा है, कामना वासनाएं ऐसी हैं, ज्योतिष संघ की मायावादी की नहीं होने पर भी ज्योतिष संघ की प्रवृत्ति है, इसलिए ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जो कोई हृदय में कामना वासना उत्पन्न ही नहीं हो। अपनी चेष्टा से ये चीजें नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। उत्तम भागवतों के उत्तम श्लोक में वर्णित भगवान की कथा श्रवण से ही यह हो सकता है। गुरु से मत छिपाओ, नहीं तो भगंदर हो जाएगा। गुरु अथवा उत्तम जो वैष्णव हैं, हमारे सुहृद बंधु हैं, उनसे इन चीजों को मत छिपाओ। बहुत से लोग ऐसे छिपा रहे हैं तो वो नासूर या भगंदर होकर के निकलेगा। इसलिए उत्तम भागवतों से उत्तम श्लोकों में वर्णित भगवान की कथा श्रवण करो, उसे नष्ट की भक्ति पहले नष्ट की भक्ति होगी, जिसके प्रभाव से नष्ट की भक्ति होने पर रज तम काम क्रोध इत्यादि सब नष्ट हो जाएंगे। प्रयत्न करो पुनः पुनः, जल्दी नहीं होगा, तभी पुनः पुनः प्रयत्न करना है। यदि तो काम क्रोध नष्ट हो जाते हैं, और यदि रहेंगे भी तो भुने हुए चने की भांति उसमें अंकुर नहीं होगा। रज और तम गुण से जीव में लय विक्षेप और इतर वासनाएं उत्पन्न होती हैं। एतई अनाभिधम का तात्पर्य नष्ट की भक्ति उदित होने पर कामादि रूपियों से साधक का हृदय विक्षिप्त नहीं होता, चित्त भक्ति मार्ग में स्थिर हो जाता है और विषयों के प्रति अरुचि हो जाती है। एक्सप्लेन
When the devotee comes to this stage and he prays to Sri Krishna in a very humble mood, he offers grief-stricken prayers. At that time, Krishna hears the prayers of the devotee and his heart is melting. Now devotee is not committing any namapradha at all. And gradually, by the mercy of Krishna, bhava appears, rati appears. So this process has been described in Srimad Bhagavatam. So Srila Bhaktivinoda is quoting, Srimatam Swakata Krishna, Purya Shavana Kirtana, Vibhyanta Surya Bhadrani, Vintunoti Surya Zabhav. Here, Nashna Kresho Bhadrishu, Nitya Bhagavata Sevaya, Bhagavata Tumas Lokte Bhakti Bhakti Nastaki, Dhanara Jastu Mubhava, Kamala Vadyaste, Chaitarita Anavitam Sneetam Sattvai Prasidati. It begins Srimatam Swat Pratam Krishna. Hearing Krishna's glories and then repeating the kirtan of those glories.
Have you sent any email to
Sushil?
Sushil Agrawal?
Yes.
What?
To invite him officially on your behalf, and that you remember that he wanted to come for Vigraha Pratishtha.
He should know that he should bring his wife with him.
Yes.
Because for Grihastha,
yes,
with wife, they should do any
auspicious activities.
So it is better to bring with him his wife.
Abhadrishu means all inauspicious obstacles. They are Krishna destroyed. How? Prayeshu. Not completely, but almost completely. How would it happen? Ittam Bhagavata Seva. By every day hearing Srimad Bhagavata and associating with and serving Bhakta Bhagavata, the devotee who is the embodiment of the loving principles of Srimad Bhagavata. So, when almost all anarthas have been destroyed, at that time, the devotee becomes fixed in devotional service. Bhakti, Bhakti, Naishviki. When he's situated in devotional service, which is fixed, unwavering, then calm, low, and free, anger, all of these things, they will no longer affect his heart. His heart becomes pure and far appears. It happens when the living entity, he knows Guru Maharaj Ashram, he takes unconditional shelter for Lotus Guru Sri Guru. And where does this come from, Guru Seva? Without any duplicity, without any selfish motivation. As he goes on associating and serving in this way, he has the opportunity to hear and some taste in Vasudeva Kata, Krishna Kata awakens. His material desires begin to go. All offenses are gradually cleared. It should be understood if our attachment to this world and material desires are not leaving our heart, then we are not hearing properly and we are not associating properly. When his heart is purified, upon hearing the pastimes of Krishna, they'll manifest in his heart like a spurti. When he takes Harinam without any offense, Harinam Asura Aneka Surupa, the unlimited surups of Harinam, Krishna and his various pastimes, they'll gradually be awakened within his heart. If there is no Nam Aparad, and anarthas are being cleared, then the tendency for Stri Sangha and Mayavadi Sangha, the association of women and the association of impostors, will not awaken. It is not possible to overcome these obstacles by one's own endeavor. It is only possible by surrendering to Sadguru, hearing from Sadguru, rendering service to Sadguru. Otherwise, the heart will be riddled with so many defects. And one should not be half duplicity and try to conceal these defects from Sri Guru. If one will try to hide one speakers. It will be futile because one day surely they will come out. So by hearing, gradually steady devotional service comes. One will have to make very hard endeavors for this also. You have to try very hard. If it will not come at once, again try. As it's gradually progressing, the effects of anartha will go away. And if something remains, if there's still some anartha or desire in the heart, it will not be able to affect him. It will not produce fruits. It will be exactly like fried seeds. If you take seeds and plant them in the ground, they must grow. But if seeds have been fried, then they have no tendency to grow. It's impossible. So, nashta apreshu vadreshu, when the anartha is almost destroyed, but something is there. Yet what is there? When he's in naishtiki bhakti, his bhakti is fixed and steady, then whatever is remaining, it cannot grow. In other words, it will not produce life, vishay, and another, that means laziness, distraction of mind, etc., at the time of hearing, chanting, and remembering.
उस समय में भगवान के निकट ऐसी प्रार्थना होती है या भक्त लोग पर दुख यदि आता है तो किस रूप में ग्रहण करते हैं इसको बतलाते हैं श्रीमद् भागवत से। तत्ते नुकंपम सुसुमिक क्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हित बाग बबु भी विधन नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो पुरुष जो भक्त साधक अपने किए हुए कर्मों के फल को और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे भगवान की कृपा मान करके निर्विकार रूप से भोगते हैं और काय मन वाक्य से आपके चरणों में समर्पित करते हुए जीवन धारण करता है, वही मुक्ति के आश्रय स्वरूप भगवान के चरणों का अधिकारी होता है। तत्तेनुकंपम तत्ते अनुकंपम ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं और साधकों के लिए शिक्षा दे रहे हैं। सुख या दुख इनकी प्राप्ति को भगवान की कृपा समझो। यदि दुख आया सुख आया तब तो कोई बात नहीं, हमने किया, और यदि दुख आया तो इन लोगों ने हमारे शत्रुओं ने किया अथवा भगवान ने किया, ये दुख दिया, ऐसा समझते हैं। भक्त लोग हैं इस अवस्था में पहुंचे हुए, वे लोग ऐसा नहीं समझते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार से जो कुछ आया है दुख या सुख निर्विकार रूप से सहन करो और उसके लिए दूसरे को दोषी मत बतलाओ। ये हमारा शत्रु है, इसने हमें दुख दिया, वृथा रूप में उसे लड़ाई झगड़ा विवाद और मन खराब हो जाएगा। इसलिए यदि दुख आता है तो अपने किए हुए कर्मों का फल मान लो, किंतु जो इससे भी उत्तम भक्त हैं जरा वो क्या समझते हैं कि अब हमारे पापों का अपराधों का अब समय खत्म हो गया, क्षय हो गए हैं और भगवान भी कभी कभी साधकों के हृदय में उत्कंठा बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। नाम आभास के द्वारा ही यदि सारे प्रकार के अपराध इत्यादि सब दूर हो जाते हैं तो इतनी उच्च स्थिति में पहुंचा हुआ, आसक्ति की स्थिति में पहुंचा हुआ साधक के हृदय में नहीं रह सकता, उनको दुख क्यों होता है। हरदास ठाकुर 22 बाजार में मारे गए, क्यों? उनके पूर्व जन्मों का कर्म था, सीता जी को रावण ने चोरी कर लिया, तो उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मान लेंगे, अथवा उनको रावण ने चोरी कर लिया, रावण का दोष मानेंगे, किसका दोष मानेंगे? रामचंद्र जी की ही इच्छा है, ऐसी लीला करेंगे, इसलिए रावण के हृदय में ऐसा कर करके ये सब कुछ कराया, वो लोग नहीं कर सकते। और कभी कभी साधकों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए करते हैं, उनका कर्म फल नहीं रहता तो भी सृष्टि करके उनको दीनहीन बनाने के लिए दुख इत्यादि को प्रदान कर। द्रौपदी का पूर्व जन्म का कर्म फल नहीं था, वो भगवत इच्छा से ऐसा हुआ। और भक्त यदि ऐसे स्थिति वाले रहे उनको भी, इसलिए अपने दुख का कारण किसी दूसरे शत्रु के ऊपर में न लगाओ, कोई उससे झगड़ा विवाद मत करो या उसके विरुद्ध में कुछ किसी से नालिश करो, अपने आप उसे सह लो। ऐसे व्यक्ति मुक्ति पद के दाएं भाग होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, अर्थात जिनके चरणों में मुक्ति है वे भगवान, भक्ति और भगवत सेवा, तीनों इनके उत्तराधिकारी होते हैं। डायरेक्ट रूप में भगवान की सेवा, भक्ति और भगवान तीनों की चरणों में के वो उत्तराधिकारी होते हैं। यो हम लोग प्राय दुख आने पर दूसरों के सिर पर मरते हैं। सीखो, टॉलरेंस रखो, धैर्य रखो। हरिदास ठाकुर जी ने कभी भी शत्रु नहीं माना, बल्कि प्रिय बंधु बने रहे, भगवान से प्रार्थना करें इनको क्षमा कर, ऐसे ही रखो। क्षमा गुण रखो, एक आदमी हजार बार दोष करता है और क्षमा मांगता है क्षमा कर दो, ऐसा नहीं कि क्षमा नहीं करेंगे। भक्ति राज्य में क्षमा का बहुत ही उच्च स्थान है, इसलिए सब समय क्षमावान बन, नहीं तो तुम्हारे अपराधों को भगवान कैसे क्षमा करेंगे यदि तुम ही नहीं क्षमा करता है, भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए क्षमा कर दो।
So after defining some of the symptoms of the devotee in the state of asakti, question comes, how does such a devotee pray, and in what way does he accept the fate and fortune that comes to him in this world? So in this regard, Srila Bhaktivinoda Thakur is quoting a very famous verse from Srimad Bhagavatam, spoken by the Brahma, that ten kampam susamu shivano, ujjan evaka kritam vipakam,
साउंड ठीक है, बटन बटन ठीक है। हरे कृष्ण
So, Lord Brahma, in this verse, he's saying that person who he receives all types of happiness and all types of suffering, considering them to be the fruits of his own activities, karma phal, and he also thinks that this is coming by to him by the mercy of Bhagavan, and he accepts them all with his heart is nirvikar, that means undisturbed, no transformation of his consciousness in the face of happiness and distress. And at the same time, he offers at the lotus feet of Krishna his body, his mind, and his words. That person is qualified to Umukti Pade, to attain the lotus feet of Sri Krishna. In the commentary, Srila Bhaktivinoda Thakur explains, Brahmaji is praying to Krishna in this verse, and through the medium of his prayer, is giving a teaching to all sadhaks. What is that teaching? Whatever happiness or distress is coming to us, we should think, this is Krishna's mercy. This is his direct kindness upon us. Otherwise, the devotee thinks, these things are happening to me as a result of my own sinful activities and offenses performed previously. Sometimes, Bhagavan, he makes some difficult condition for his devotee. Why? Because he wants to increase their mood of humility, and he wants to increase their eagerness to meet with him and to serve him. So, practically speaking, Srila Gurudev said, this verse means that one should never think, this person is my enemy, and this person is giving me problems. Why? Everything is coming by our own karma phal. If one will think that someone is my enemy and they're giving problems to me, what will happen? Then one will become involved in quarreling, one will become involved in so many controversies, and in this way, his opportunity to do bhajan will be completely ruined. We should know that simply by namabhas, not chudana, by namabhas, the semblance of the name, all types of karmas are destroyed. So how is it possible that in the stage of asakti, the devotee will have to undergo distress as a result of karma phal? We see many examples. Srila Haridas Thakur was beaten in 22 marketplaces. Can it be as a reaction for his previous activities? Quite impossible. Because he's chanting purely, he has no karma phal. We know that Sita Devi was stolen by Ravan. What was the cause? It cannot be karma phal. So what was the cause? Well, it was the desire of Lord Ram for the purpose of performing some very special pastimes. We see that Draupadi was abused in the assembly of the Kauravas. This was not the fruit of previous birth activities. Therefore, when distress comes to the devotee, he should not attribute the cause of his distress to others, but rather he should simply render service to Krishna and Krishna's devotees and consider everything to be their mercy. We should try to practice the quality of being tolerant and not blaming anyone else, not seeing anyone else as our enemy. Like Srila Haridas Thakur, who was beaten by the Muslims in 22 marketplaces, he never thought that those who were beating him were his enemies, but rather he forgave them and even praying to Krishna that Krishna should bestow mercy upon them. So Srila Gurudev commented that even if someone makes a mistake or does something wrong or something against us 1,000 times, then what should we do? Still we should forgive them. Why? The very confidential meaning is that we have aparad. We are committing offenses. We are doing things wrong. And we pray to Krishna, please forgive us. But if ourselves, we have no feeling of forgiveness for others, then how will Krishna forgive us for our offenses?
ऐसी स्थिति में पहुंचने पर पराशांति होती है. इत्यच्युतांग्रम ग्रीम भजतोनुवृत्त्या भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः परां शांतिम उपैति साक्षा. इसी का परलल और एक श्लोक है, याद है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैस्त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नुता सुपुष्ट अनुभाषा. एक ही तरह के श्लोक है. हे राजन, भजतोनुवृत्त्या अभ्यास करता पुनः 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 पर कर नैरंतर्यमयी भक्ति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, जो करता है भगवान के चरणों का, जो भजन करता है निरंतर अभ्यास के द्वारा, उसके प्रति भक्ति, प्रेममयी भक्ति, विरक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और प्रबोध, भगवत तत्व ज्ञान की स्फूर्ति होती है, जरूर होगा. भजन करते हैं, परेश अनुभव नहीं हुआ, भगवत तत्व यदि नहीं ज्ञान हुआ, भक्ति नहीं हुई और वैराग्य नहीं हुआ, तो सुनने में करने में दोष है. ऐसा होने पर तत्व ज्ञान स्फूर्ति हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह परम शांति का अनुभव करता है. दूसरे श्लोक में भी गई भक्ति परेश अनुभव विरक्ति चैस्त्रिक एक काल, एक ही काल में तीनों होगा ही. भजन जितना करेंगे भक्ति प्रेमा भक्ति तक वहां तक पहुंचेगी और भगवत तत्व ज्ञान होगा और साथ साथ में संसार के प्रति विरक्ति जरूर होगी. भजन कर रहे हैं, तत्व ज्ञान भी है, किंतु वैराग्य नहीं है, तो फिर क्या हुआ? गड़बड़ी है, गड़बड़ी है. वहां तीनों में से एक दो है और एक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. और भी कहा है, वासुदेवे भक्ति,
वासुदेवे भगवती
भक्ति जो प्रयोजिता जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानं च ज्यादा है. वहां पर भी ऐसा, ये सब लक्षण है, सिम्टम्स है. उन सिस्टम बैरोमीटर के द्वारा अपनी भक्ति को मापो, देखो कहां त्रुटि है हमारे अंदर में. विषयों में आसक्ति है नहीं है, ज्योतिष संघ की लालसा है नहीं है, बैरोमीटर ये श्लोक सब है. इसके द्वारा माप करके देखो, अपनी त्रुटि समझो और तब फिर भक्ति में पढ़ो. नौ जोगेंद्र में से अन्यतम कवि ऋषि नेमि महाराज के प्रश्न के उत्तर में इस श्लोक को बतलाया है. भगवत भक्ति के अतिरिक्त आत्यंतिक मंगल का कोई भी उपाय नहीं है. काल्पनिक शांति और जड़ भोग को दूर करने के लिए निर्बोधों की भांति क्षणिक प्रयास करके जीव मंगल नहीं लाभ कर सकता है. निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, अनुशीलनम निरंतर धारावत अविच्छिन्न गति से भक्ति का यह करना होगा. कोई कष्ट हो गया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करो और निरंतर अभ्यास के द्वारा त्रिगुणातीत निर्गुण भक्ति को प्राप्त करना ही कल्याण जनक है। कह रहे हैं कौन, कभी किसको कह रहे हैं, नेमी महाराज। महाराज जनक उस समय नेमी थे। शुद्ध भक्तिमान व्यक्ति स्वयं रूप भागवत धर्म में प्रतिष्ठित होकर युक्त वैराग्य से सेवा करते हैं, भजन करते हैं। युक्त वैराग्य, अज्ञानता उन्हें स्पर्श नहीं करती। भक्ति राज्य में प्रतिष्ठित होकर उत्तरोत्तर उन्नति उन्नत भक्ति को लाभ करता हुआ पराशांति लाभ करता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। बस केवल भक्त ही शांत रह सकता है, ऐसा बनने की चेष्टा करो। हाँ, फल्गु वैराग्य नहीं हो, मरकट वैराग्य न हो, स्मशान वैराग्य न हो, कैसा हो, युक्त वैराग्य। कृष्ण से अधिक कृष्ण का जो स्मरण करते हो उससे अधिक उनके परिकरों का स्मरण करो, ये भी एक बहुत विशेष बात है। कृष्ण से अधिक उनके भक्त लोग दयालु होते हैं। भगवान की दयालुता तो गुरु में और वैष्णव में होती है। भगवान के लिए चित्कार करोगे वो नहीं सुनेंगे, और भगवत भक्त लोग झट सुन लेंगे और भगवान से निवेदन करेंगे इस पर दया करें। इसलिए भगवान से भी अधिक उनके परिकरों का स्मरण और अनुशीलन लाभकारी है। साधकों के लिए महाप्रभु की अपेक्षा रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामियों की, गोपियों की अनुगत्यमयी भक्ति प्रणाली अधिक उपादेय है। समझो, महाप्रभु कभी कभी बड़े कठिन हो जाते हैं, बड़े कठिन। हरिदास, छोटे हरिदास को सारे जीवन के लिए प्रत्याग कर दिया। कृष्णदास, काला कृष्णदास को भी प्रत्याग कर दिया। जब तक थे वो कुछ दिन रखा और आते ही पुरी में उसको हटा दिया। बड़े कठिन है किंतु, हाँ वही तो ना, वो दूसरी बात फिर। तो रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामियों की कौन सी भक्ति, गोपियों की अनुगत्यमयी वाली भक्ति प्रणाली अधिक उपादेय है। भक्तों के भावों का चिंतन, भक्तों का भाव रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के भावों का चिंतन, प्रार्थना, रुदन, यही लोभ उत्पत्ति की विधि है। स्वरूप सिद्धि को लक्ष्य करके इंद्रियों द्वारा भक्ति का अनुशीलन सिद्ध को, सिद्ध स्वरूप सिद्धि को इंगित कर, लक्ष्य कर, इंद्रियों के द्वारा कृति साध्या भवेत साध्या, इसका ये था। अनुशीलन साधन कहलाता, सभी साधन नहीं कहेगा। भाव के को लक्ष्य करके जो साधन किए जाते हैं वो अभी साधन नहीं है, साधना भास उसको समझो। भाव होने पर साधन न होकर के भाव भक्ति हो जाएगी, और वस्तु सिद्धि होने पर प्रेम सेवा। यू कैन एक्सप्लेन।
Now, in the next verse, Srila Bhaktivinoda Thakur is continuing to present the symptoms of a person who has attained the stage of asapti. When the devotee is in this stage, he attains Parashanti, supreme platform of peacefulness. As stated in Srimad Bhagavatam, Kavi Yogendra is speaking this verse to Nimi Maharaj. Ichyachyutam grim bhajato nuvritya. And this verse also has a parallel verse. Bhakti Parishana Bhavo Virakti Anyascha Chaisatrika Ekakala. These two verses are making the same point. The meaning is, Kavi Yogendra says, "Hey King, if one who practice bhakti continuously, again and again, trying, practicing the angas of bhakti, abhyas, repeated practice, without any break or interruption, then what will happen to him? He will realize transcendental love. He will develop complete detachment from this material world. And within his heart, he will realize all types of Bhagavat Tattva Gyan. These three will come at the same time they will come. And the fruit of attaining these three things is Parashanti. He realizes supreme peacefulness. So Srila Gurudev commented that if these three qualities, the development of one's service mood, detachment from this world, and the realization of Bhagavad Tattva, if they don't come at the same time, then there's a defect in our hearing. So, what happens if someone, they develop their service mood, their bhakti, and they have realized, they understand Tattva Gyan, but they're not detached from the things of this world? Then what? It means actually, they don't have any of these qualities. This is only their imagination. Why? Because three will come at the same time. If someone really has Tattva Gyan and really has devotion, then he'll really have detachment also. Therefore, Srimad Bhagavatam states, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayata Subharagyam Gyan Chaya Dhavaitukam. Simply by rendering devotional service to Sri Krishna, one acquires causelessly realization, knowledge, transcendental knowledge, and detachment from the world. So these verses, they are giving symptoms. The verses themselves are like barometers for measuring the degree to which we are making progress in devotional service. If the desire to associate with a woman comes in the heart, then one will have to become introspective and examine oneself and try to discover what is the fault in me, what is the defect in my execution of devotional service. So now, in Srila Gurudev's commentary, Bhajan Rahasyavriti, to this verse, is explained. Kavi Yogendra is explaining to Nimi Maharaj in reply to one of his questions. He said that except for by the practice of bhakti to Bhagavan, there is no ultimate auspiciousness for the living entity. Imaginary peacefulness and trying to restrain oneself from mundane enjoyments as if one has become senseless, this will not bring about any auspiciousness whatsoever. Because these endeavors are temporary, one will not be fixed in such endeavors. So therefore, one should practice and make a hard endeavor to take shelter of Krishna's pure devotees. And only by this can one attain Triguna Tita Bhakti, or devotional service, which is uncontaminated by Sattva, Raja and Tama, the three modes of material nature. For a person who is situated in pure bhakti, then he will practice yukta vairagya. It means appropriate renunciation. Seeing, not rejecting the things of this world, but seeing all the things of this world are related to Krishna, and accepting them only to the degree to which they are favorable for devotional service. This is called yukta vairagya. The person who is practicing yukta vairagya cannot be touched even slightly by ignorance. When one is gradually advancing in devotional service and comes to this stage of asakti, he attains complete peacefulness. It is attained especially by taking shelter of the pure devotees. To hear about and to remember and to follow the example set by Krishna's pure devotees is more beneficial than to hear, chant, and remember and follow Sri Krishna. We see that sometimes Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was very harsh and he was very strict. For example, for a small mistake on the part of Chota Haridas, Chaitanya Mahaprabhu rejected him and refused to see him ever again for the rest of his life. We also see that Kala Krishna Das, he became entangled with some gypsy ladies. And what did Mahaprabhu do when he returned to Puri? He sent him to Navadvip and gave up his association. So we see that sometimes for a small defect, Chaitanya Mahaprabhu, he would apparently reject someone, at least externally. But the devotees, they are very kind. So there's more benefit in following the pranali, the methods of devotion, the teachings, and cultivating the remembrance of Srila Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, and the other associates of Chaitanya Mahaprabhu, than even Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. So, therefore, the method is to remember the moods of the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, to meditate upon their moods, to pray and to weep, following in their moods. And in this way, greed will be awakened within the heart. When all the senses are engaged in hearing and chanting and remembering in this way, but with the intention of attaining Swarup Siddhi, all of one's activities have a specific intention behind them. What is that? I must realize my eternal constitutional spiritual body, which is suitable for rendering service to Radha and Krishna. So when hearing, chanting and remembering is undertaken with this specific objective, only then is it called sadhana. Many devotees are hearing, chanting and remembering, but all are not doing sadhana, because their aim and objective is not bhav. In the stage of bhav, Swarup Siddhi comes. When one has attained realization of his Siddha Deha, then gradually he will attain Prema Seva and he will attain Vastu Siddhi, that means entrance into the eternal pastimes of Radha and Krishna. This is the process.
Aaj bal bhog ki vyavastha nahi hai. Aaj jal khane ki koi vyavastha nahi hai. No management of breakfast today. Our prasadam is ready. We'll serve at about 11. 10? 10. Aur apne apne samano ko lekar ke bus stand tak le aana, bus tak le aana padega. Abhi ja karke apne apne saman जो बस से जाएंगे बसों के पास रख करके ऊपर में चढ़ा देंगे. अभी नहीं, 10 बजे तक अभी जाकर के अपनी व्यवस्था करो, बांधो छानो, जो कुछ करना उसे करो. यू शुड मेक रेडी योर लगेजेस सो दैट एट 10 यू शुड ब्रिंग ऑल. जा After prasadam, no. Before. That should bring. At 12, we will definitely लिव दिस प्लेस। 12 बजे के बाद में हम लोग प्रतीक्षा नहीं करेंगे, जो जाना चाहेगा वो 12 बजे से 12 बजे तक देखेंगे, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो हमारी बस चली जाएगी, इसलिए 12 बजे तक आ
जाएंगे। The buses, please be so kind to help again and appoint some young devotees to climb on the roof and help properly stash all the luggages, and they should be also properly bound so that they don't fall off. Sometimes we have the experience going to Govardhan,
they
fall off the roof, and then when we arrive in Govardhan, they...
Karti, bhakti raj mein pratishthit hokar uttarottar unnati, उन्नत भक्ति को लाभ करता हुआ परार शांति लाभ करता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सफली अशांत, बस केवल भक्त ही शांत रह सकता है, ऐसा बनने की चेष्टा करो। हाँ, फल्गु वैराग्य नहीं हो, मरकट वैराग्य न हो, मशान वैराग्य न हो, कैसा हो? युक्त वैराग्य। कृष्ण से अधिक, कृष्ण का जो स्मरण करते हो उससे अधिक उनके परिकरों का स्मरण करो, ये भी एक बहुत विशेष बात है। कृष्ण से अधिक उनके भक्त लोग दयालु होते हैं। भगवान की दयालुता तो गुरु में और वैष्णव में होती है। भगवान के लिए चित्कार करोगे वो नहीं सुनेंगे, और भगवत भक्त लोग झट सुन लेंगे और भगवान से निवेदन करेंगे इस पर दया करें। इसलिए भगवान से भी अधिक उनके परिकरों का स्मरण और अनुशीलन लाभकारी है। साधकों के लिए महाप्रभु की अपेक्षा रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामियों की, गोपियों की अनुगत्यमयी भक्ति प्रणाली अधिक उपादेय है। समझो, महाप्रभु कभी कभी बड़े कठिन हो जाते हैं, बड़े कठिन। हरिदास, छोटे हरिदास को सारे जीवन के लिए प्रत्याग कर दिया। कृष्णदास, काला कृष्णदास को भी प्रत्याग कर दिया, जब तक थे वो कुछ दिन रखा और आते ही पुरी में उसको हटा दिया। बड़े कठिन हैं, किंतु
महाप्रभु
जमंतवन हाँ वही तो
ना।
वो दूसरी बात फिर। तो रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामियों की कौन सी भक्ति, गोपियों की अनुगत्यमयी वाली भक्ति प्रणाली अधिक उपादेय है। भक्तों के भावों का चिंतन, भक्तों का भाव रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के भावों का चिंतन, प्रार्थना, रुदन, यही लोभ उत्पत्ति की विधि है। स्वरूप सिद्धि को लक्ष्य करके इंद्रियों द्वारा भक्ति का अनुशीलन, सिद्ध को, सिद्ध स्वरूप सिद्धि को इंगित कर, लक्ष्य कर इंद्रियों के द्वारा, कृति साध्या भवेत साध्या, इसका ये था अनुशीलन साधन कहलाता, सभी साधन नहीं कहेगा। भाव के को लक्ष्य करके जो साधन किए जाते हैं वो अभी साधन नहीं है, साधना भास उसको समझो। भाव होने पर साधन न होकर के भाव भक्ति हो जाएगी, और वस्तु सिद्धि होने पर प्रेम सेवा। यू कैन एक्सप्लेन।
Now, in the next verse, Srila Bhaktivinoda Thakur is continuing to present the symptoms of a person who has attained the stage of asapti. When the devotee is in this stage, he attains parashanti, supreme platform of peacefulness. As stated in Srimad Bhagavatam, Kavi, one of the Kavi Yogendra is speaking this verse to Nimi Maharaj. Ichyachyutam grim vajato nuvritya. And this verse also has a parallel verse. Bhakti parishano bhavo virakti anyasti chaisatri kraika kala. These two verses are making the same point. The meaning is, Kavi Yogendra says, "Hey King, if one who practice bhakti continuously, again and again, trying, practicing the angas of bhakti, abhyas, repeated practice, without any break or interruption, then what will happen to him? He will realize transcendental love. He will develop complete detachment from this material world, and within his heart, he will realize all types of Bhagavat Tattva Gyan. These three will come at the same time. They will come, and the fruit of attaining these three things is Parashanti. He realizes supreme peacefulness." So Srila Gurudev commented that if these three qualities, the development of one's service mood, detachment from this world, and the realization of Bhagavat Tattva, if they don't come at the same time, then there's a defect in our hearing. So what happens if someone, they develop their service mood, their bhakti, and they have realize they understand Tattva Gyan, but they're not detached from the things of this world? Then what? It means actually they don't have any of these qualities. This is only their imagination. Why? Because three will come at the same time. If someone really has Tattva Gyan and really has devotion, then he'll really have detachment also. Therefore, Srimad Bhagavatam states, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayata Subhara Gyan Chaya Dhavaitukam. Simply by rendering devotional service to Sri Krishna, one acquires causelessly realization, knowledge, transcendental knowledge, and detachment from the world. So these verses, they are giving symptoms. The verses themselves are like barometers for measuring the degree to which we are making progress in devotional service. If the desire to associate with a woman comes in the heart, then one will have to become introspective and examine oneself and try to discover what is the fault in me, what is the defect in my execution of devotional service. So now, in Srila Gurudev's commentary, Bhajana Hasyavritti, to this verse, this explained. Kavi Yogendra is explaining to Nimi Maharaj in reply to one of his questions. He said that except for by the practice of bhakti to Bhagavan, there is no ultimate auspiciousness for the living entity. Imaginary peacefulness and trying to restrain oneself from mundane enjoyments as if one has become senseless, this will not bring about any auspiciousness whatsoever. Because these endeavors are temporary, one will not be fixed in such endeavors. So therefore, one should practice and make a hard endeavor to take shelter of Krishna's pure devotees. And only by this can one become attain Triguna-tita-bhakti, or devotional service, which is uncontaminated by Sattva, Raja and Tama, the three modes of material nature. For a person who is situated in pure bhakti, then he will practice yukta vairagya. It means appropriate renunciation. Seeing, not rejecting the things of this world, but seeing all the things of this world are related to Krishna, and accepting them only to the degree to which they are favorable for devotional service. This is called yukta vairagya. The person who is practicing yukta vairagya cannot be touched even slightly by ignorance. When one is gradually advancing in devotional service and comes to this stage of asakti, he attains complete peacefulness. It is attained especially by taking shelter of the pure devotees. To hear about and to remember and to follow the example set by Krishna's pure devotees is more beneficial than to hear, chant, and remember and follow Sri Krishna. We see that sometimes Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was very harsh and he was very strict. For example, for a small mistake on the part of Chota Haridas, Chaitanya Mahaprabhu rejected him and refused to see him ever again for the rest of his life. We also see that Kala Krishna Das, he became entangled with some gypsy ladies. And what did Mahaprabhu do? When he returned to Puri, he sent him to Navadvip and gave up his association. So we see that sometimes for a small defect, Chaitanya Mahaprabhu, he would apparently reject someone, at least externally. But the devotees, they are very kind. So there's more benefit in following the pranali, the methods of devotion, the teachings, and cultivating the remembrance of Srila Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, and the other associates of Chaitanya Mahaprabhu, than even Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. So, therefore, the method is to remember the moods of the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, to meditate upon their moods, to pray and to weep, following in their moods. And in this way, greed will be awakened within the heart. When all the senses are engaged in hearing and chanting and remembering in this way, but with the intention of attaining Swarup Siddhi, all of one's activities have a specific intention behind them. What is that? I must realize my eternal constitutional spiritual body, which is suitable for rendering service to Radha and Krishna. So when hearing, chanting and remembering is undertaken with this specific objective, only then is it called sadhana. Many devotees are hearing, chanting and remembering, but all are not doing sadhana, because their aim and objective is not bhava. In the stage of bhava, Swarup Siddhi comes. When one has attained realization of his Siddha Deha, then gradually he will attain Prema Seva, and he will attain Vastu Siddhi, that means entrance into the eternal pastimes of Radha and Krishna. This is the process.
Aaj bal bhog ki vyavastha nahi hai. Aaj jal khane ki koi vyavastha nahi hai. No management of breakfast today. Aur prasadam is ready. We'll serve at about 11. 10. और अपने अपने सामानों को लेकर के बस स्टैंड तक ले आना, बस तक ले आना पड़ेगा. अभी जा करके अपने अपने सामान जो बस से जाएंगे बसों के पास रख करके ऊपर में चढ़ा देंगे. अभी नहीं, 10 बजे तक. अभी जाकर के अपनी व्यवस्था करो, बांधो छानो, जो कुछ करना है उसे करो. यू शुड मेक रेडी योर लगेजेज सो दैट एट 10 यू शुड ब्रिंग ऑल. जाओ After prasadam, no. Before.
Before.
That should bring.
Yeah,
at 12, we will definitely leave this place. बारह बजे के बाद में हम लोग प्रतीक्षा नहीं करेंगे. जो जाना चाहेगा वो 12 बजे तक देखेंगे. कोई आ गया तो ठीक है, अन्य तो हमारी बस चली जाएगी. इसलिए 12 बजे तक.
यू ब्रिंग योर लगेज बिफोर और आफ्टर, बट बाय 12 बसेस विल बी. ऑल द डिवोटीज हु हैव बीन हेल्पिंग इन मॉनिटरिंग द बसेस, प्लीज बी सो काइंड टू हेल्प अगेन एंड अपॉइंट सम young devotees to climb on the roof and help properly stash all the luggages, and they should be also properly bound so that they don't fall off. Sometimes we have the experience going to Govardhan,
or
fall off the roof, and then when we arrive in Govardhan, they